16 अगस्त दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूँ रेहान फदल। ईरान ने चरमपंथियों के खिलाफ रूस को अपने हवाई ठिकाने के इस्तेमाल की इजाजत दी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने अल्पसंख्यक स्टेटस के बारे में केंद्र सरकार के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया।
हमारा तो क्लियर है, उन्होंने एफिडेविट दिया, हमने काउंटर एफिडेविट दिया, आज इस पे आर्गुमेंट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 हफ्ते का टाइम दिया है, अब 3 हफ्ते बाद देखा जाएगा क्या होता
है। बताएंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कई शास्त्रीय संस्करणों के बारे में भी। और आपको ले चलेंगे रियो ओलंपिक, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। रूस ने सीरिया के जिहादी समूह पर हवाई हमले के लिए पहली बार ईरान में हवाई अड्डे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री का कहना है कि रूस के लंबी दूरी के बॉम्बर और लड़ाकू जेट ने पश्चिमी ईरान में स्थित हमेदान अड्डे से उड़ान भरी। इस हमले में विद्रोही लड़ाकू मारे गए हैं। अब तक मॉस्को सीरिया के भीतर से हमले कर रहा था। पिछले महीनों में रूस और ईरान ने सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। रक्षा मंत्री का कहना है कि हमले अलेप्पो, इदलीब और दियरजोर में चरमपंथियों और इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाकर किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त मानवाधिकारों के विशेषज्ञों ने बहरीन में शिया मुसलमानों के साथ हो रहे बर्ताव की निंदा की है। इस पैनल ने शिया धार्मिक गुरुओं और विद्रोहियों पर चरमपंथ और अन्य आरोप लगाए जाने की आलोचना की। इस पैनल का कहना था कि शिया मुसलमानों पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि जिस तरह से एक समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है उसे छिपाया जा सके। बहरीन में मौजूद शिया समुदाय का आरोप है कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। तुर्की में पिछले महीने तख्ता पलट की असफल कोशिश की जांच कर रही पुलिस ने इस्तांबुल में कई व्यावसायिक संस्थानों पर छापे मारे हैं। पुलिस ने 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रबंधकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं। सरकारी मीडिया का कहना है कि इन कंपनियों पर अमरीका स्थित धार्मिक प्रचारक फतेहुल्ला गुलेन को वित्तीय सहायता देने का संदेह है, जिन पर तख्ता पलट करने की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि वे खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। संसद में बोलते हुए तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्द्रिम का कहना था, फतेहुल्ला गुलेन आएंगे और उनकी जवाबदेही होगी। जिन्होंने खून बहाया है उनकी जवाबदेही होगी, लेकिन मेरे नागरिकों, हम लोग बदले के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्द्रिम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन में वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिससे खुफिया संदेश भेजना सुरक्षित होगा और इन संदेशों को हैक करना नामुमकिन है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ का कहना है कि सैटेलाइट से भेजे गए संदेश को अणु से भी छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा ताकि उसे पढ़ा ना जा सके। अगर इस संदेश को पढ़ने की कोशिश की जाती है तो स्वयं बर्बाद हो जाएगा। इस तकनीक का ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर विकास किया गया है। ईरान में सुरक्षा बलों ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े 4 चरमपंथियों को मार दिया है। 3 को एक घर में गोली मारी गई और 4थे को करमनशाह में चले एक अभियान में मारा गया। ये इलाका इराकी सीमा के नज़दीक है। इराक और सीरिया में चल रहे संघर्ष में ईरान की सेना भी शामिल है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय विषय से। खबरें मिल रही हैं कि ईरान ने सीरिया में मौजूद चरमपंथियों पर हमले के लिए रूस को अपने हवाई ठिकाने का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। हाल ही के महीनों में रूस और ईरान के बीच आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। रूस के मुताबिक ये सभी हमले चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के अलेप्पो, इदलीब और अज़ोर में स्थित केंद्रों पर किए गए हैं। वहीं मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है ये सभी हमले सीरियाई सरकार के विरोधियों पर किए जा रहे हैं, जिनमें आम नागरिक भी घायल हो रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा विवरण सुना रहे हैं वैभव श्रीवास्तव।
रूस के मुताबिक सीरिया में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों और विद्रोहियों के समूह अल नुसरा पर किए हुए हमले असरदार साबित हुए। सीरिया में बसे चरमपंथियों पर हमलों के लिए रूसी हवाई सेना ईरान के एक हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा ईरान और रूस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सीरिया पर हमलों के लिए ईरान ने अपने हवाई अड्डे के इस्तेमाल की अनुमति दी हो। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पश्चिमी ईरान के हामदान हवाई अड्डे से उसके लंबी दूरी तक मार करने वाले लड़ाकू विमानों ने सीरिया में मौजूद विद्रोहियों को बड़ी संख्या में मारा। ईरान में 1979 में हुए संविधान के सत्यापन के बाद किसी भी देश को ईरान में सैन्य शिविर बनाने की अनुमति नहीं है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो ईरानी अधिकारियों को अपने हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से रोकता हो। ईरान और रूस के बीच सैन्य समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसी वर्ष जनवरी में मॉस्को और तेहरान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें सैनिकों के प्रशिक्षण और चरमपंथ विरोधी गतिविधियां शामिल थीं। पिछले एक साल से सीरिया के हवाई अड्डों से रूस लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों का संचालन कर रहा है, पर यह पहली बार है कि किसी तीसरे देश में लड़ाकू विमान तैनात किए गए हों। ये सभी विमान लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखते हैं और ईरान में इन्हें तैनात करने से इनके हमला करने के वक्त में भारी कमी आएगी। इन्हें यहाँ तैनात करने से रूसी हवाई हमले की क्षमता को और बल मिलेगा और इसे ईरान और रूस के बेहतर रिश्तों का भी सबूत माना जा रहा है। अमरीका ने इस हवाई अड्डे के इस्तेमाल पर कोई बयान नहीं दिया। अमरीका ने भी इस्लामिक स्टेट और जबहत फतह अल शाम के चरमपंथियों के खिलाफ सऊदी अरब और बाकी सहयोगी देशों के साथ मिलकर कई हवाई हमले किए हैं। हालांकि अमरीका हमेशा से ही सीरियाई विद्रोहियों के समर्थन में रहा है। 2011 में बशर अल असद की सरकार के विरोध में बगावत के बाद से ही ईरान लगातार सीरियाई सरकार को सैन्य और आर्थिक मदद देता आया है। ईरान और रूस दोनों ही बशर अल असद की सरकार के दो मुख्य सहयोगी बन चुके हैं।
ईरान ने रूस को अपना हवाई ठिकाना इस्तेमाल करने की अनुमति दी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब रुख करते हैं भारत का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर कहा है कि सरकार के रुख में बदलाव राजनीति से प्रेरित है। विश्वविद्यालय का कहना है कि सर सैयद अहमद द्वारा 1875 में स्थापित यह संस्थान अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया था और वो भी चंदे से। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को खारिज कर दिया था और इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे बाद में मौजूदा सरकार ने वापस ले ली थी। इस पूरे मामले पर बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने एएमयू के जनसंपर्क अधिकारी राहत अबरार से बात की।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दाखिल किया है उसका जवाब हमें देना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि एएमयू इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। हमारा कहना यह है कि ये कॉलेज जब बना है और तरसियों ने जब ये मिशन शुरू किया है उस वक्त से ये अफिडेविट जा रहा है। तो जो सरकार ने दाखिल किया था अटॉर्नी जनरल ने एफिडेविट, उसका काउंटर एफिडेविट हमने दाखिल किया है।
क्या है मामला, ये कुछ आप बता पाएंगे कि जो पहला जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ में एफिडेविट फाइल किया था।
जब हमने यूनिवर्सिटी में ये तय किया कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो है, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, हमारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि साहब आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अपनी पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी जो चाहे बना सकते। उस वक्त यूपीए सरकार ने गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है अपने एमडी और पीजी कोर्सेज जो आपके यहाँ है मेडिसिन में
जी,
उसमें 50% सीटें जो है वो आप और इंडिया कोटे को दे दीजिए। हमने कहा कि हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए कि हमारा तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उसको अपनी एडमिशन पॉलिसी बनाना और उसका वो है। हमने उस वक्त वक्ती तौर पर उसको काट करने के लिए जो हमारे ऊपर एक तलवार लटक गई
जी,
हमने 50% रिजर्वेशन कर लिया ऑल इंडिया बेस पर मुसलमानों का। उसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में गए वो केस हम लूज कर गए। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानते हैं और इस वक्त हम स्टे दे रहे हैं, बाद में हम ये सुनेंगे क्या है। उसने हमें स्टे ग्रांट कर दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख के दिया था कि हम इस बीच में जो रिजर्वेशन है 50% वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनका ठीक। तब से ये केस चल रहा है
जी।
अब एनडीए सरकार ने यू टर्न ले लिया। उसने कहा था हम यूपीए गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दाखिल किया था हम उसको नहीं मानते और हम इस यूनिवर्सिटी को जो आपकी है हम उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही नहीं मानते
जी।
उन्होंने विड्रा किया।
एफिडेविट में क्या पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए जो मतलब प्रोमिनेंट मतलब छोटे
प्रोमिनेंट ये मुख्तसर? जिस दिन सर सैयद ने ये सोचा कि एक इदारा बनना चाहिए उसी दिन उनके जहन में क्लियर हो गया था। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ, तो ये मुस्लिम इदारे के तौर पर उन्होंने बनाया, मुसलमानों से चंदा दिया, मुसलमानों ने 30 लाख रुपए जमा किया। यूनिवर्सिटी बनने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि साहब वो आपको चार्टर जब मिलेगा जब आप ये इश्योर करें कि आप 30 लाख रुपए देंगे हमें।
सुप्रीम कोर्ट ने अब शायद 3 हफ्तों का टाइम दिया है सेंटर को अपना
सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज टाइम दिया है। जो हमारा जवाब है कि उस पर हम वो देना चाहते हैं, हमें 3 हफ्ते का टाइम दिया। हमारा तो क्लियर है, उन्होंने एफिडेविट दिया, हमने काउंटर एफिडेविट दिया, आज उस पर आर्गूमेंट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 हफ्ते का टाइम दिया है, अब 3 हफ्ते बाद देखा जाएगा क्या होता है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी राहत अबरार से बात कर रहे थे सलमान रावी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी के पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद और गहरा गया है। उड़ीसा सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ से बहकर आने वाली महानदी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कई बैराज बना दिए हैं जिससे आने वाले दिनों में उड़ीसा में जल संकट गहरा जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उड़ीसा के इस दावे को खारिज कर रही है। पिछले 1 महीने से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक धरना प्रदर्शन और बंद का सिलसिला चल रहा है। क्या है पूरा विवाद बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
मंगलवार को महानदी जल विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा बंद का आयोजन किया। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी अलग अलग संगठन ओडिशा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बंद, धरना और प्रदर्शन का यह सिलसिला पिछले महीने भर से चल रहा है। असल में छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी में लगभग 14 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की उपलब्धता रहती है। छत्तीसगढ़ में पानी की यह उपलब्धता लगभग 6 बिलियन 61 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि ओडिशा में यह 7 बिलियन 11 मिलियन क्यूबिक मीटर है। पश्चिम ओडिशा और ओडिशा के हीराकुद जैसे बांध पानी के लिए छत्तीसगढ़ की इसी महानदी पर आश्रित हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ ने महानदी पर लगभग 65 छोटे बड़े बैराज बनाने शुरू किए हैं और ओडिशा सरकार का आरोप है कि इन सभी बैराजों के पूरा हो जाने से ओडिशा में जल संकट पैदा हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र को हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। ओडिशा की बीजू जनता दल की सरकार ने महानदी पर सांसद प्रसन्ना आचार्य की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल भी बनाया है, लेकिन विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों ही राज्यों में आम लोग आखिर इतने आक्रोशित क्यों हैं, यही सवाल हमने ओडिशा बीजू जनता दल के उपाध्यक्ष और सांसद प्रसन्ना आचार्य से पूछा।
जनता तो सब एक है, हर एक जगह तो कोई सफर करता है तो जनता ही सफर करता है। देखिए, हम लोग गए थे छत्तीसगढ़, वहाँ भी कई जगह पर किसानों ने हमसे मुलाकात किया और उन्होंने भी रोष प्रकट किया कि भाई ये जल जो है ये इंडस्ट्री के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये किसानों के लिए नहीं है। यहाँ इतना पैसा सरकार लगा रहा है, किसानों को पानी नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ भी जनता में रोष है मैंने देखा, उड़ीसा में भी जनता में रोष है।
लेकिन ओडिशा सरकार के विरोध के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रही छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इस मुद्दे पर किसी भी तरह से समझौते के पक्ष में नहीं है।
हमारा पानी हम ही ना पिए, 70% से ज्यादा महानदी छत्तीसगढ़ में बहती है, पूरा कैचमेंट एरिया 95% हमारा है। हमको अभी तक हम 20% भी शेयर उसका नहीं ले पाए और हम कोई बांध नहीं बना रहे, बराज बना रहे, उस पर उड़ीसा आपत्ति कर रहा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का रुख भी ओडिशा को लेकर नरम नहीं है।
इसको विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ 25% पानी का उपयोग हम कर रहे हैं, जब हम बैठ के बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का और बहुत बड़ा शेयर है जिसका उपयोग हम भविष्य में सिंचाई के लिए करेंगे। ये तो अभी शुरुआत हुई है, चर्चा निकली है तो अब दूर तक जाएगी। अब हम तो अपने हिस्से का एक एक बूंद का उपयोग और बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में करेंगे।
रमन सिंह के इस बयान के बाद यह बात तो बहुत साफ है कि कम से कम छत्तीसगढ़ महानदी के जल विवाद को सुलझाने की मुद्रा में नहीं है और ओडिशा में आंदोलनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले पर कोई त्वरित कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। मतलब साफ है कि महानदी के पानी का यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराएगा। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। हाल में संपन्न मानसून सत्र के बाद इस विधेयक के समर्थन के लिए बिहार विधानमंडल के बुलाए गए एक दिवसीय सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधेयक के अध्ययन और विशेषज्ञों की राय लेने पर हमें लगा कि इसका समर्थन किया जाना चाहिए। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक को लेकर दो साल से अधिक समय तक चले राजनीतिक गतिरोध के बाद इसी मानसून सत्र में संसद ने इसे पारित कर देश में समान कर प्रणाली लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस बिल को राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराना भी आवश्यक है, इसलिए बिहार विधानमंडल ने यह विधेयक मंगलवार को पारित कर दिया। इस तरह विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में जीएसटी बिल को पारित करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। इससे पहले भाजपा की बहुमत वाली असम विधानसभा जीएसटी बिल को अपनी मंजूरी दे चुकी है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी बिल को लाए जाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार,
हम लोगों की इच्छा थी कि हमारे राज्य के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष हो।
वित्त मंत्री जी भी, केंद्रीय वित्त मंत्री जी भी सहमत, लेकिन कुछ कठिनाई थी क्योंकि तत्कालीन हम लोगों का गठबंधन बीजेपी के साथ था, हम लोग एक साथ थे, एनडीए की सरकार चल रही थी, तो कई राज्यों को बीजेपी शासित कई राज्यों को इस बात को लेकर रिजर्वेशन थे, उनका विरोध था। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों की सरकार, हम लोगों ने कहा कि हम लोग सरकार चलाते हैं और इंडिपेंडेंट व्यू लेने का हम लोगों को अधिकार है। इसलिए हम लोगों का आग्रह था और तब एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री जी बने, श्री सुशील कुमार मोदी। हमारे कतिपय मामलों पर अपने स्टैंड है, आज भी वो स्टैंड है, उसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। लेकिन जीएसटी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज कि एक तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव, कहीं किसी चीज का उत्पादन हुआ वहां से माल चला और हम लोगों के राज्य में आया तो जितने सामानों की बिक्री होती है सारे सामान टैक्स नेट में आ नहीं पाते।
वहीं भाजपा विधानमंडल दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जीएसटी बिल को स्वीकार करने के सरकार के संकल्प का समर्थन किया और इससे जुड़ी संभावनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि
दुनिया के 27 देश मिलकर अगर एक बाजार बना सकते हैं तो क्या भारत के 29 राज्य और दो केंद्र शासित राज्य मिलकर एक बाजार नहीं बना सकते? हम तो एक संविधान से गवर्न होते हैं। जीएसटी को भी इसमें लाभ होगा और इसलिए मैं बिहार की सरकार को फिर से एक बार इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मिलकर केंद्र राज्य ने इस बिल को पास करने का समर्थन देने का निर्णय किया है और जो बहुत तरह की प्रक्रियात्मक जो कमियां हैं उसको दूर करने की दिशा में काम करेंगे। और इसी के साथ मैं इस 122वें संविधान संशोधन विधेयक को और का समर्थन करता हूं।
बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सभी सदस्यों ने जीएसटी संशोधन विधेयक पर अपनी अपनी सहमति दे दी है। इसके विरोध में तीन विधायकों वाली भाकपा माले के सदन में उपस्थित एकमात्र सदस्य ने अपना मत रखा। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
महाराष्ट्र के सतारा में एक डॉक्टर को 6 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये मामला तब सामने आया जब 49 साल की मंगला चेथे नाम की महिला सतारा से पुणे जाते हुए लापता हो गई थी। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमरीश द्विवेदी ने सतारा के पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल से बात की।
ये जो 16 जून 2016 को हमारे यहाँ एक मिसिंग दाखिल हुई थी, जो मंगला चेदे हु इज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ऑफ आईटक, एंड यह केस मिसिंग हुआ था, दाखिल हुआ था, तो लास्ट कॉल जो यह मंगला चेदे को को किया था, दैट वॉज बाय डॉक्टर पोल जो करंट एक्यूज है. तो एज शी वॉज अ स्टेट प्रेसिडेंट सो वी वेर कीनली फॉलोइंग दिस. सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वी केम टू नो कि देर वॉज वन नर्स इन डॉक्टर पोल्स हॉस्पिटल, ज्योति मांडरे, हु इज एक्टिव ऑन विक्टिम सेल, दैट मिसिंग लेडीज सेल. So we could pick up her, and then after thorough investigation, we came to know that the missing lady, Mangala Chede, was murdered by this co-accused Jyoti and Dr. Pol. So hum unke through Dr. Pol ko humne ek acha trap le karke we arrested him in Mumbai. Why aane ke baad already Jyoti Mandre jo uski accomplice thi, she had told us unhone murder kaise kiya tha Mangala Chede ka. To us isse humne Dr. Pol ko custody leke 7 din ki hame custody mili. To usme jab baad mein hum aage thorough investigation karna shuru kiya, to jo Y police station ke area mein 2003 से 5 मिसिंग दाखिल है, 2003, 8, 10 और 2016 में मिसिंग दाखिल है सलमा और भंडारी बोल के. हमने उनसे पूछताछ की. ही हैज कन्फेस्ड मर्डर्स ऑफ 5 फीमेल्स एंड 1 मेल इन सिंस 2003 और उसके जो स्केलेटन है, बॉडी है, वो रिकवर हुए. अभी कल हमने 5 स्केलेटन रिकवर किए हैं.
ये थे सतारा के पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल. राष्ट्रीय पर्वों पर देशभक्ति के तराने फिजाओं में खुद ब खुद गूंजने लगते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के एक नहीं दर्जन से ऊपर शास्त्रीय वर्जन मौजूद हैं. वंदे मातरम के शास्त्रीय गायकी के अंदाज को एक दुर्लभ संग्रह से खोज निकाला गया है. वाराणसी से रोशन जायसवाल ने ये रिपोर्ट भेजी है.
ये तो सभी जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे स्वर दिया. लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की गायकी लोकप्रिय हुई तो वो थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के वक्त इस गीत को बंगी काफी राग में गाया. आइए सुनते हैं. अलाउद्दीन खान साहब द्वारा पुराने वक्त में बनाए गए एक बैंड में भी उनके शिष्य और कई बंगला फिल्मों में मशहूर गाने कंपोज करने वाले तिमिर भरन ने वंदे मातरम को वाद्य यंत्रों पर कुछ इस अंदाज में कंपोज किया. वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वर तो दिया ही, साथ ही अपनी आवाज में गाया भी. महाराष्ट्र के दिग्गज शास्त्रीय संगीतज्ञ केशव राव भोले की आवाज में वंदे मातरम. इस दुर्लभ संग्रह को करने वाले वाराणसी के संगीत साधक और साशी संगीत समाज के संयोजक 61 वर्षीय कृष्ण कुमार रस्तोगी ने बताया कि
इनमें कुछ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जिनमें गांधी जी की स्पीच है और उस पर उनके दस्तखत भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी भाषण है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं, पंडित महामदन मोहन मालवीय जी का भी रिकॉर्ड है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी रिकॉर्ड उसमें शामिल है. इसके अलावा जो बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम का गीत बनाया वो कई रागों में, शास्त्रीय रागों में अलग अलग कलाकारों ने गाया है, किसी ने बजाया भी है वाद्य यंत्रों पर, उनके भी जो रिकॉर्ड निकले 78 RPM स्पीड में वो भी मेरे पास संग्रह में हैं. आप देखेंगे कि वंदे मातरम को बहुत लोकप्रियता उस जमाने में भी हासिल थी, आज भी है, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई और लोग उसे गाकर बड़ा अपने देश पर फक्र महसूस करते थे और स्वतंत्रता संग्राम में तो इसने संजीवनी का काम किया है।
संगीत नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश के पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने वंदे मातरम और शास्त्रीय गायक के संबंध पर कुछ इस तरह रोशनी डाली।
बाहुतिये तुमि मा शक्ति हृदय तुमि मा भक्ति। तो जो माँ की प्रतिमा, माँ का स्वभाव, माँ का बल, माँ का तेज, माँ की ममता, इसके अनुकूल स्वरों की मिठास, तेजी, तीखेपन में जो अंतर आता था, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर प्रणव रंग जी ने अपने स्वर के आयाम के द्वारा शास्त्रीयता के इस गुण धर्म को ऐसा पिरोया इसमें कि लगता है कि उस पर पूरे भारत की और अपने लेखक की आत्मा मुखरित हो रही है, पूरे देश की आत्मा।
आज के दौर में वंदे मातरम का रूप शास्त्रीय न होकर सरल हो चुका है, जो आसानी से समझा भी जा सकता है, लेकिन हैरानी की बात है कि आज़ादी के वक्त शास्त्रीय गायकी की बुनियाद पर गाया गया वंदे मातरम जितने वीर सपूतों को पैदा कर चुका है, आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाराणसी से रोशन जसवाल।
और अब रियो ओलंपिक। रियो में अब ले देकर बैडमिंटन और कुश्ती में कुछ उम्मीदें बाकी बची हैं। भारत के किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं, जहां उनका मुकाबला उनसे वरीयता में ऊंचे चीनी खिलाड़ियों से है। आइए सीधे चलते हैं रियो, नॉरिस प्रीतम के पास। नॉरिस, बैडमिंटन में क्या चांस दे रहे हैं आप भारतीय खिलाड़ियों को?
रेहान साहब, जहाँ तक बैडमिंटन का सवाल है या कुश्ती का सवाल है, उससे पहले मैं अपने सुनने वालों को एक बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो ये है कि नरसिंह यादव का जो है पार्टिसिपेशन खेलों में भाग लेना एक बार फिर खतरे में पड़ गया है। आज सवेरे वाडा ने गेम्स विलेज में उसकी डोप टेस्ट की जो थी हेयरिंग, जिसमें नाडा ने, जो भारतीय खेल प्राधिकरण का एंटी डोपिंग एजेंसी, उन्होंने क्लियर कर दिया था, लेकिन वाडा ने उसको ऑब्जेक्शन उठाया है, उसकी हेयरिंग हुई है और मामला जो खेल का, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों का कोर्ट है कैस, उसमें चला गया है और 18 को तारीख को उसका डिसीजन होगा, इससे पहले कि 19 तारीख को इवेंट में भाग ले, 18 को तो डिसीजन होगा। तो अब हमें 18 के तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, इससे पहले हम और बाकी खेलों की बात करें। जहां तक आपने बैडमिंटन का जिक्र किया, तो काफी हम कल गोपी से बात हो रही थी, वो बहुत आश्वस्त है, काफी उन्हें कॉन्फिडेंस है कि सिंधु जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और अच्छा खेलेंगी और अब आगे। लेकिन अब ये जो होता है, इस तरह की बातें जो होती हैं, इससे मोरल बहुत डाउन हो जाता है, तो लेकिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन जहां तक सिंधु का और गोपी का सवाल है, उनको लगता है कि उनका सेमीफाइनल में जाना निश्चित है। रेहान साहब,
तो चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, थोड़ी सी बात करें कुश्ती के बारे में। हरदीप सिंह तो वो बाहर हो गए हैं, मतलब पहला मुकाबला हार गए हैं टर्की के पहलवान से। बाकी महिला पहलवानों के बारे में क्या आप क्या राय है, बहुत संक्षेप में नॉरिस?
जहाँ देखिए, हम सब मान के चल रहे हैं कि विनेश इस वक्त हमारी सबसे अच्छी भारतीय महिला पहलवान है, जो 48 केजी में उतरेंगी और मेरी कल गेम्स विलेज में अमेरिकन और जो ब्रिटेन के कोचेज और एथलीट हैं, उन सब का भी मानना है, वो सब थोड़ा सा उनको फिक्र है और सब पूछ रहे हैं विनेश के बारे में। इससे साफ मालूम चलता है कि हम जो भी कहें, बाहर वाले भी विनेश से थोड़े घबराए हुए हैं, तो लगता है अब उम्मीदें विनेश पे ही रहेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि नर्सिंग को लेकर जो मोरल डाउन हो जाता है, वो देखना पड़ेगा तब क्या होगा, उसी पर ही निर्भर करता है सब कुछ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका नॉरिस प्रीतम रियो से। और अब चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर।
बीबीसी समाचार। रूस ने सीरिया के जिहादी समूह पर हवाई हमले के लिए पहली बार ईरान में हवाई अड्डे का इस्तेमाल करना शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त मानवाधिकारों के विशेषज्ञों ने बहरीन में शिया मुसलमानों के साथ हो रहे बर्ताव की निंदा की है। तुर्की में पिछले महीने तख्तापलट की असफल कोशिश की जांच कर रही पुलिस ने इस्तांबुल में कई व्यावसायिक संस्थानों पर छापे मारे हैं। चीन में वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, जिससे खुफिया संदेश भेजना सुरक्षित होगा और इन संदेशों को हैक करना नामुमकिन होगा। बीबीसी समाचार।
दिनभर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।